أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد میرے پیارے دوستو بھائیوں اور پیارے درشکوں میں سید تاج زیدی کا آپ کو پیار بھرا سلام آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے جیون میں سکھی خوش پرسن ہوں گے۔ میرے دوستو میں آپ کے سمکش امام حسین فاؤنڈیشن کے مادھیم سے احکام پر آدھارت ایک پاٹھیکرم کا پروگرام لے کر آ رہا ہوں جس میں ہمارا پریتن یہ ہوگا کہ ہم ان مسائل کی جانکاری پراپت کریں، ان مسائل کا جواب دیں جو ہمارے ویوہارک دھارمک اور ویکتیگت جیون سے سمبندھت ہیں، اور ہم اس پروگرام میں پریتن کریں گے کہ اس سے سمبندھت جو بھی پرشن ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کا اتر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایشور نے جب انسان کو پیدا کیا، اس دھرتی پر بھیجا، تو اس کے لیے اس نے ایک قانون بنایا، ایک نیم بنایا اور کہا کہ اے انسان، اے منش، میں نے تجھے اس دھرتی پر اتارا ہے اس لیے کہ تاکہ تو اس انوسار اس کے انوسار جیون ویتیت کرے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ جیسے کہ ایشور اپنی پوتر کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے، ایک قانون بنایا ہے، ایک نیم بنایا ہے، اور تم سب کے لیے ایک مارگ، ایک راستہ تیار کیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان کو لوک اور پرلوک کا سوبھاگیہ پراپت کرنا ہے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایشور کا پریہ بندہ بن جائے تو اس کو اس انوسار سے زندگی بتانی ہوگی، ویسے جیون یاپن کرنا ہوگا جیسے کہ ایشور نے بتایا ہے۔ پریہ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں احکام سے سمبندھت چیزوں پر بات چیت کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم احکام کی وادی میں وارد ہوں میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کے سارے قانونوں کو، سارے نیموں کو، سارے سدھانتوں کو ایک روپ میں دیکھنا چاہیں تو ایشور نے انسان کے جیون کے لیے تین پرکار کے نیم رکھے ہیں، تین پرکار کے قانون بنائے ہیں۔ پہلے نیم اور قانون وہ ہیں جو انسان کے وشواس، انسان کے عقیدے، انسان کی آستھا سے سمبندھت ہیں۔ یہ وہ قانون ہیں جن کو اسلامی پستکوں میں اصول دین یعنی دھرم کا استمبھ کہا گیا ہے، اور یہ وہ قانون ہیں جن میں ایک بندے کے لیے، ایک ویکتی کے لیے، ایک مکلف کے لیے یہ آوشک ہے کہ وہ ترک کے آدھار پر ان چیزوں کا وشواس کرے، اس میں دوسرے کی تقلید نہیں کر سکتا ہے، اس کو ترک کے آدھار پر ماننا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان نالج میں، جس نالج کی جس منزل پر ہے، جتنی اس کو جانکاری ہے، جتنا اس کا گیان ہے، اس آدھار پر اس کا ترک ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان ترک کے مادھیم سے وشواس تک پہنچنے کے لیے کسی دوسرے کی سہایتا لے لے، خود کسی دوسرے کی تقلید نہیں کر سکتا ہے، کسی دوسرے کا انوسرن نہیں کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے ترک کو نہیں مان سکتا ہے، لیکن ہاں یہ اور ہے کہ ترک کے مادھیم سے وشواس تک پہنچنے کے لیے دوسرے کی سہایتا اوشیہ لے سکتا ہے۔ تو پہلا وہ ہوا جو ہمارے عقیدوں، ہمارے وشواس سے سمبندھت ہوا۔ دوسرا وہ ہے جو ہمارے ویوہارک جیون سے سمبندھت ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ हम क्या अंजाम दें और किस चीज़ से दूर रहें, हमारा दायित्व क्या है और क्या हमको नहीं करना है, इनको फुरूए दीन कहा जाता है। और यही वो अहकाम है जो हमारे जीवन के मार्ग को स्पष्ट करते हैं कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना है। तीसरी चीज़ जो है वो है अख्लाक। ये वो चीज़ है जो हमारी आत्मा को पवित्र और उसको शक्तिशाली बनाती है। अगर इंसान जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसका पालन करेगा तो उसकी आत्मा शक्तिशाली होगी, वो ईश्वर के करीब हो जाएगा, वो ईश्वर का प्रिय बंदा बन जाएगा। जैसे ही कहा गया है कि उदारता दिखाओ, कंजूस ना रहो, बहादुर बनो, वीर बनो, यतीमों का ध्यान रखो, ये वो सब गुण हैं जो इंसान अगर अपने अंदर समो ले तो ईश्वर का प्रिय बंदा बन जाता है। तो ये तीन चीज़ें हुई, पहले वो जो अकीदों से संबंधित हैं, दूसरे वो जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है जिनको अहकाम कहा जाता है, तीसरे वो जो हमारे आत्मा से संबंधित है जिनको अखलाक कहा गया है। अहकाम अगर हम शब्दकोश के अनुसार देखें तो अहकाम बहुवचन है हुक्म का। हुक्म को अगर हम हिंदी में देखें, हुक्म यानी आदेश, यानी इसके विषय से ही पता चलता है कि ये वो आदेश हैं जो ईश्वर ने हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए हमारे लिए बनाए हैं। अब अगर कोई इंसान ईश्वर के बताए हुए रास्ते के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहता है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि पहले वो ये जानता हो कि ईश्वर का आदेश क्या है। भाई बिना जाने तो कोई किसी रास्ते पर नहीं जा सकता। हमको कहीं छोटा सा भी सफ़र करना है, कोई यात्रा करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से चलना है, कहाँ तक जाना है और उसका मार्ग क्या है, ये आवश्यक है। इसी तरह से अगर हम ईश्वर के बताए हुए कानून का पालन करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईश्वर का कानून है क्या, ईश्वर का नियम है क्या, ईश्वर का हुक्म है क्या, ईश्वर का आदेश है क्या। तो इसके हमारी पुस्तकों में तीन रास्ते बयान किए गए हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर का आदेश क्या है तो इन तीन रास्तों में से किसी एक रास्ते पर अगर हम चले जाएं तो हमें पता चल जाएगा ईश्वर का आदेश क्या है। पहला रास्ता है इज्तिहाद। यानी इज्तिहाद क्या मतलब, यानी इंसान खुद इतना ज्ञान रखता हो, खुद इतनी जानकारी रखता हो, खुद इतना पढ़ा लिखा हो कि वो कुरान से, हदीस से और उससे संबंधित जो विषय हैं उनके माध्यम से ये पता लगा ले कि ईश्वर का आदेश क्या है, यानी खुद ईश्वर के आदेश तक पहुंच जाए। जैसे कि वो ये पता लगा कि मसलन नमाज वाजिब है या रोज़ा वाजिब है वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका ये है कि इंसान के पास खुद इतना ज्ञान नहीं है, खुद इतनी जानकारी नहीं है, वो खुद कुरान और संबंधित विषयों से ईश्वर का आदेश नहीं निकाल सकता है। तो अब दूसरा रास्ता है तकलीद या दूसरे का अनुसरण करना। हमको नहीं पता था कि हम कैसे नमाज के वाजिब होने को पता लगाएं, तो हमको उस इंसान की तकलीद या उसका अनुसरण करना होगा जो मुज्तहिद है। और एक तीसरा रास्ता भी है जिसको एहतियात कहा जाता है। एहतियात एक ऐसा रास्ता है जो वाकई सख्त है, जिस पर हर इंसान अमल नहीं कर सकता, जिसका हर इंसान पालन नहीं कर सकता है। इसलिए हम इस प्रोग्राम में एहतियात के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, आगे जब हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो हम संक्षिप्त रूप से एहतियात के बारे में बयान करेंगे। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने जब इंसान को पैदा किया तो उसको एक ऐसी चीज़ दी जो उसको दूसरी चीज़ों से अलग बनाती है, दूसरे पैदा की हुई चीज़ों से अलग बनाती है। और वो क्या चीज़ है, वह इंसान की बुद्धि, वह इंसान का विवेक, वह इंसान की अक्ल। जब इंसान को ईश्वर ने पैदा किया तो उस वक्त उसको बुद्धि देकर पैदा किया, उसके अलावा दुनिया की किसी चीज़ में वो बुद्धि नहीं है, सिर्फ इंसान को दिया है। इसी वजह से जब ईश्वर ने इंसान को पैदा किया तो कहा, ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, जो हमने तुमको बुद्धि दी है उसका एक बड़ा दायित्व भी दिया है। तो इंसान को जब ईश्वर ने बुद्धि दे दी तो उसके अनुसार उसके ऊपर जिम्मेदारी भी रखी है और कहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के चक्कर में ना पड़े रहो, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी इस जीवन में इस अनुसार से होना चाहिए जैसा हम बताते हैं। तो अगर हमको बता करना है तो जान लीजिए इस्लाम में आदेश दो प्रकार के होते हैं, यानी अहकाम दो प्रकार के होते हैं, या अहकाम वज़ई होते हैं या तकलीफी होते हैं। वज़ई उन अहकाम को कहा जाता है जो हमसे संबंधित या इंसान से संबंधित चीज़ों के बारे में आदेश बयान करते हैं। जैसे कि इंसान ने नमाज़ पढ़ ली, अब वो नमाज़ सही थी या नहीं, ये हुक्म वज़ई बताएगा। इंसान ने किसी चीज़ को पाक कर दिया, वो सही था या नहीं, इसको ये हुक्म वज़ई बताएगा। दूसरा दूसरा हुक्म तकलीफी है, जो ये बताता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी हमारे मार्ग को स्पष्ट करता है। हुक्म तकलीफी जो खुद पांच भागों में बटा हुआ है, पहला वाजिब, दूसरा हराम, तीसरा मुस्तहब, चौथा मकरूह, पाँचवा मुबाह। हराम वाजिब उन कार्यों को कहा जाता है जिनको करना ईश्वर ने अनिवार्य किया है, और अगर नहीं किया गया तो उसके ऊपर ईश्वर का क्रोध होगा, उसका श्राप होगा। जैसे कि जब ईश्वर ने कहा कि नमाज़ पढ़ो, तो अगर नहीं पढ़ी तो ईश्वर का क्रोध है। हराम उन कार्यों को कहा जाता है जो ईश्वर ने वर्जित किए हैं और कहा है, ए मेरे बंदे, इन कार्यों को अंजाम न देना। जैसे कि जब ईश्वर ने यह कहा कि तुमको झूठ नहीं बोलना है, ए मुसलमान, मैं ये पसंद नहीं करता कि तू झूठ बोले, तो ये हराम है। अगर इंसान ने इस कार्य को अंजाम दिया तो उसके ऊपर ईश्वर का अज़ाब होगा, ईश्वर का क्रोध होगा। हाँ, अगर अंजाम नहीं दिया तो ईश्वर के आदेश का पालन किया, उसको सवाब मिलेगा। तीसरा कार्य जो होता है वो है मुस्तहब, जो तीसरा हुक्म है वो है मुस्तहब। मुस्तहब उन चीज़ों को कहा जाता है जिसमें ईश्वर चाहता है कि अंजाम दिया जाए, लेकिन हमको उसने हमारे ऊपर उसने अनिवार्य नहीं किया। कहा है, मैं पसंद करता हूँ अंजाम दो, लेकिन अंजाम नहीं दिया है, अगर कार्य नहीं किया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अंजाम दोगे तो सवाब, नहीं करोगे तो कोई अजाब नहीं। जैसे कि ईश्वर चाहता है कि हम सदका दें, अगर सदका दिया तो सवाब, अगर सदका ना दिया तो कोई अजाब नहीं। चौथी चीज़ जो होती है वो है मकरूह। मकरूह मुस्तहब के बिल्कुल उलट है, यानी क्या, यानी ईश्वर चाहता है कि एक मुसलमान ना करे उस कार्य को, लेकिन अगर फिर भी कर लिया है तो उसको कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। जैसे कि ईश्वर चाहता है कि एक मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त काला लिबास ना पहने, काला वस्त्र धारण ना करे, लेकिन अगर वस्त्र वह पहन लिया है, काला कपड़ा पहन लिया है, तो उसके ऊपर कोई अजाब नहीं है। उसके बाद आखिरी किस्म जो हमारे जीवन में अधिकतर पेश आती है वो है मुबाह। मुबाह उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके बारे में ईश्वर ने कोई आदेश नहीं दिया है और कहा है, अगर तुम करोगे तो कोई फ़र्क नहीं, नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं, अगर करोगे तो सवाब नहीं, नहीं करोगे तो अजाब नहीं। जैसे कि हमारा सोना, खाना, उठना, बैठना, ये सारे कार्य हमारे मुबाह हैं। तो दर्शकों, हमने इस प्रोग्राम में क्या जाना, हमने इस प्रोग्राम में जाना कि ईश्वर ने सबके लिए कानून बनाए हैं। कानून जानने का तरीका या इज्तिहाद है, या तकलीद है, या एहतियात है। और अहकाम दो तरह के होते हैं, या वज़ई होते हैं या तकलीफी। और तकलीफी अहकाम पाँच भागों में बटे हुए हैं, और वो हैं वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह और मुबाह। इसके बाद के कार्यक्रम में हम इंशाल्लाह इज्तिहाद और तकलीक के बारे में बातचीत करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।